चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरराजुः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं गुरुणां तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयमान् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे मस्ते हर्ष का विषय है श्रीमद्भागवत का द्वितीय दिन आज होने जा रहा है। क्या प्रसंग हुआ?
सुरंजन उपाख्यान चल रहा है।
कौन सा प्रसंग?
चतुर्थ स्कंद सुरंजन ध्रुव है। जैसे ध्रुव प्रसंग पवन देव के संवाद है।
सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को भागवत की कथा सुना रहे हैं। सारे विश्व से सब ऋषि उपस्थित है। वहां पर नारद जी जैसे ऋषि, व्यास जैसे ऋषि, कवि हवि अंतरिक्ष गौतम इत्यादि ऋषि, सारे ऋषि भागवत के वहां पर उपस्थित हैं। गृहस्थ भक्तों में भी बहुत से लोग हैं। उसमें कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, कोई राजर्षि हैं, कोई ब्रह्मर्षि हैं, कोई देव ऋषि हैं, एक से एक सभी हैं। और सबने मिलकर के अंत में यही निर्णय किया ये परीक्षित महाराज जी के लिए ये भागवत सुनना ही सर्वोत्तम है। और कोई यज्ञ करना, जैसे आजकल कलयुग में बहुत से यज्ञ भी हो रहे हैं, लाखों करोड़ों पैसे बाहर किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इत्यादि भी उसमें जा रहे हैं, तो किसी ने यज्ञ का अनुमोदन नहीं किया। सब ने एक स्वर से श्रीमद् भागवत कथा हो, इसी से ही जगत का और इनका उद्धार हो सकता है, इसलिए श्रीमद् भागवत उन्होंने प्रारंभ किया। शिष्य बैठा गद्दी पर और गुरु वर्ग लोग सभी उसके नीचे बैठे श्रोता के रूप में, और जो व्यास गद्दी पर बैठा उसने जो श्रोता जितने थे वह समस्त श्रोताओं को प्रणाम किया गुरु के रूप में। गुरु ऐसा ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वक्ता ही श्रेष्ठ हो, श्रोता श्रेष्ठ हो सकता है, किंतु भगवान की कथा उसको सुनने में अच्छी लगती है इसलिए वो सुनता है। आजकल एक ऐसा अभिमान होता है लोग जो पाठक करते हैं, जो बाकी कुछ नहीं जानते और जो बैठा है वही सबसे अधिक जानता है। बोलने से नहीं, भीतर में भाव होना चाहिए। भाव नहीं और खूब बोल रहे हैं और उसका पालन नहीं करते तो वो तो बहुत ही निम्न प्रकृति का व्यक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर बैठे हुए सबको प्रणाम किया। परीक्षित जी मूल श्रोता हैं और मूल वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग विचार करें, जो परीक्षित महाराज जी कैसे हैं और सुखदेव गोस्वामी जी कैसे हैं। जिसको कृष्ण ने अपनी गोदी में ली हो, उत्तरा के गर्भ में, जिस परीक्षित महाराज जी को कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसको रक्षा किया और अपनी गोदी में लेकर के उसका लालन पालन किया, सुखदेव गोस्वामी को यह सुयोग मिला कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी को गोदी में खिलाया, उनको प्यार किया, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि परीक्षित महाराज जी उनसे श्रेष्ठ हैं। जब विचार करते हैं और फिर दूसरी तरफ जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी कम नहीं है, सचमुच में वो गुरु होने योग्य हैं। जिसके तरफ में विचार किया जाता है वही मालूम होता है कि श्रेष्ठ है। परीक्षित जी साधारण नहीं थे, जिनके लिए ये श्रीमद् भागवत पैदा हुआ, प्रकाशित हुआ, और जो सुखदेव गोस्वामी को अंत में नसीब नहीं हुआ वो परीक्षित महाराज जी को मिला। क्या चीज, इस पर थोड़ा सा विचार करें भागवत देख करके। सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के मुख से कह रहे हैं, आशा महो चरण ऋण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुणमल औषधीन जास्तुस्वजम स्वजन आर्य पथंज हित्व भेजे मुकुंद पद्मिन सुतिथि मृभिभ्यां। श्रुतियां कोटि कोटि वर्षों से जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए खोजती हैं अभी तक वो मिल नहीं पाए श्रुतियों को। वो कृष्णचंद्र जिनकी मुट्ठी में है, ये चुल्लू भर छाट पर जिनको कृष्ण को उन्हें जा देती है, ऐसी ये गोपियां ऐसा प्रेम कृष्ण से करते हैं कि उनको बसी खुश कर देती है। उनकी चरण धूलि को पाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी प्रार्थना करा रहे हैं कि मैं वृंदावन में कहीं घास जम लूं, घास बन जाऊं, तृण बन जाऊं, लंबी ऊंची घास न बनूं, पेड़ न बनूं, छोटे छोटी दूब की घास और गुलमल लता बन जाऊं। और जिन पर गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं तो गोपियों की चरण धूलि उनके सिर पर पड़ जाए, सिर पर पड़ जाए। गोपियों की चरण धूलि इतनी बड़ी है, उद्धव को सुखदेव गोस्वामी को यह मिला कि नहीं, कभी गोपी हुए कि नहीं और गोपियों की चरण की धूलि मिली कि नहीं, ये बहुत विचारणीय बात है। ऐसा गारंटी के साथ भी हम नहीं कह सकते, क्यों जाने? जाओ
आ जाएंगे दो तीन दिन में,
ठीक। किंतु जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जी को क्या चीज मिला भागवत सुनने के बाद में, जैसे उनके विचार प्रकट हुए हैं उसे वो कृष्ण की प्यारी गोपी बने वृंदावन में। तो अब अंत जिसका बड़ा हो वही बड़ा है। सुखदेव गोस्वामी राधा जी के प्रिय सुख हो सकते हैं किंतु उनकी सेविका गोपी नहीं हुए और ये प्यारी गोपी हुए। इस तरह से हम विचार करते हैं तो देखते हैं परीक्षित महाराज साधारण नहीं है, किंतु आज्ञा बने हुए पूछ रहे हैं भगवान की लीला कथाओं को। यही भक्तों की महिमा है। तो उन्होंने कहा, पूछा सुखदेव गोस्वामी से, प्रभु ये बतलाइए जीवों के लिए परम धर्म क्या है। सुखदेव गोस्वामी जी सभा की तरफ में नजर करके, जिसमें तरह तरह के श्रोता बैठे हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक पाठ किया। वो श्लोक था सवई पुंसान परो कर्मो यतो भक्ति व्यभक्षजे अहे सुख्य अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धि। बहुत ही उच्च कोटि का यह श्लोक है। मैं तो समझता हूं कि श्रीमद् भागवत इसी श्लोक की व्याख्या है। जितने भी 12 स्कंद हैं, इसी के इस स्तर की बातों को बतलाया गया है और सब स्कंधों में। जीव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? धर्म बहुत से हो सकते हैं। गीता में कहा कि उन धर्मों को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र हमारा शरण। तो कौन कौन धर्मों को छोड़ने के लिए क्या है? कौन कौन धर्मों को? जिन धर्मों में शरीर मुख्य है, खाना पीना भोग करना ये सब चीजें मुख्य हैं, जिनमें शारीरिक संबंध है, जिन धर्मों में बेटा बेटी धन संपत्ति बाग बगीचे मेरा है ये तेरा है, जिन धर्मों में लड़ाई है। आज बहुत ऐसे धर्म है जो कत्ल कर रहे हैं लोगों को, खून बहा रहे हैं, उनको धर्म की संज्ञा दी जाएगी? ये सब धर्म ही नहीं है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये कोई भी धर्म नहीं है जो आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। इसलिए इन सब धर्मों को छोड़ो जिनमें शरीर की प्रधानता है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं उसकी बेटी हूं, उसका बेटा हूं, ये सब शारीरिक संबंध जिनमें है उन धर्मों को छोड़ो। मन से जिन धर्मों का संबंध है उन धर्मों को भी छोड़ो। इनमें लड़ाई होगी, विवाद होगा। आज देखते हैं ना, अर्थात बस इन्हीं धर्मों के चलते चौपट हो गया, भारतवर्ष से पंजाब निकल गया, उधर में बंगाल निकल गया, लंका चला गया भारतवर्ष से, कहां इंडोनेशिया से लेकर इधर कस्पियन सी तक, कश्यप ऋषि का आश्रम का स्थल था कस्पियन सी, कहां इटली के पास में, इधर में मंगोलिया और सब हमारे भारतवर्ष में थे। धीरे धीरे इन जाति और धर्मों के उन्माद से हम लोग अलग अलग होते हुए चले गए। अभी हाल ही में पंजाब भारतवर्ष से अलग हो गया इसी के नाम पर, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। अभी भी हिंदुस्तान से कुछ प्रांत अलग हो रहे हैं इस जाति और धर्म के उन्माद से। इन धर्मों को छोड़ो, ये सब धर्म नहीं है, ये बनाए गए थे कुछ विशेष परिस्थिति में, अपनी रक्षा के लिए बनाए गए, शरीर की रक्षा के लिए। आत्मधर्म एक है, वही परम धर्म है, इनको छोड़ो। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ो, इनको जो शरीर से और मन से जिनका संबंध है, परम धर्म में आओ। इसलिए कहते हैं सवई पुंसान परीक्षित महाराज जी को, देखो निश्चित रूप में सवई पुंसान पुरुष मात्र के लिए, या तो पुरुष स्त्री के लिए भी है, क्यों मनुष्य नहीं, बंदरों के लिए भी, रीछों के लिए भी, सब जानवरों के लिए भी, सब के लिए ये परम धर्म है। कैसे? अरे हनुमान जी कौन जाति में थे? जामवंत जी कौन जाति में थे? इसलिए यहाँ पर केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहा गया, बल्कि सबके लिए कहा गया, सबके लिए परम धर्म है। क्या परम धर्म है? इस चीज को समझना है। संसार में धर्म दो नहीं है, प्राणी मात्र के लिए धर्म केवल एक है, उसी को यहाँ पर श्रीमद् भागवत में व्यक्त करते हैं। आज के लोग श्रीमद् भागवत को समझ नहीं पाते, व्याख्या करने वाले भी ठीक से उसकी व्याख्या नहीं करते, लोग उसको गलत गलत समझते हैं। इसे केवल एक धर्म, यही परम धर्म है। परम माने क्या? श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये नहीं छोड़ा जा सकता है। वो धर्म क्या है? सबई परम धर्मो जहो भक्ति अथोक्षजे। अथोक्ष जो पुरुष है, प्राकृत इंद्रियों के जानने से जो ऊपर है, अतीत है, प्राकृत शरीर से, प्राकृत आंखों से, मन से भी जिनको नहीं जाना जा सकता, वो अधोक्षज भगवान कृष्ण है। इनके प्रति अहेतु की भक्ति करना ही जीव मात्र का परम धर्म है। जाति से संबंध नहीं है, साधारण धर्मों से भी संबंध नहीं है। आप लोगों ने नानक देव का नाम सुना होगा, तेग बहादुर का नाम सुना होगा, जो अपने प्राणों की आहुति दी थी धर्म के लिए। ये लोग रामकृष्ण को ही परम भगवान मान करके उनकी पूजा करते थे। अब धीरे 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 कुछ गड़बड़ी होने से अब लोग विपत पर जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण की भक्ति सब लोगों के लिए परम धर्म है। भक्ति कहा यहां पर कृष्ण को अथोक्षज पुरुष बतलाया गया, जो प्राकृत इंद्रियों से उनको नहीं देखा जा सकता, प्राकृत आंखें उनको देख नहीं सकती। इस जगत को बनाने वाला विभिन्न लोग नहीं है, दस भगवान नहीं है, अल्लाह खुदा परमात्मा ये सब अलग अलग नहीं है। इस विश्व को बनाने वाला बस एक ही है, और वो कौन है? वही कृष्ण है, परब्रह्म। सबसे आकर्षक, बहुत ही सुंदर, बहुत गुणी हैं, उन्हीं के अंश हैं, स्वांश हैं जितने अवतार, और देवता लोग क्या हैं? जिनकी शक्ति के थोड़े से प्रकाश हैं, उनके सेवक हैं जितने भी देवता देवी हैं। समस्त अवतारों के मूल अवतार ये कृष्ण हैं, मैं ही नहीं कह रहा, भागवत कह रहे हैं, समस्त पुराण उपनिषद सभी ऐसा कर रहे हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण। देखा ना भागवत में, ब्रह्मा जी उनको समझ ही नहीं सके, उनके चरण में बार बार गिर रहे हैं। वो गए थे ब्रह्मा जी कृष्ण को मोहित करने के, और वो मुग्ध हो गए अपने आप। इंद्र देखो, कृष्ण ने उनकी पूजा थोड़ी सी हटा दी तो वो कृष्ण पर वज्र छोड़ने लगे, ब्रजवासियों को पानी में डुबाने लगे, अंत में त्राही त्राही कर उनके चरणों में गिर गए। शंकर जी एक बार कृष्ण से युद्ध करने लगे, बाणासुर का पक्ष लेकर के, अंत में कृष्ण से लड़ाई में उनका मृगछाला कमर से खिसक गया, हाथ से त्रिशूल चला गया। कैसी दुर्दशा हुई? भस्मासुर के समय में जब भस्मासुर से भगे, भस्मासुर ने तपस्या की शंकर की, तो उन्होंने कहा, बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए, बोले जब ब्रह्म गुरु ही ब्रह्म मांगो। उन्होंने कहा कि जिसके अंगों पर हाथ दे दूं, सिर पर हाथ दे दूं, वो जल जाए। शंकर जी ने बिना सोचे पूछे कह दिया, या सोच करके ही कहा, ठीक है जिससे सिर पर हाथ रखेगा वो जल जाए। पास में पार्वती जी खड़ी थी, उनके को रूप देख करके मुक्त हो गया। सोचा कि शिव को खत्म करके मैं उस पार्वती को ले लूंगा, किंतु हुआ उल्टा। शंकर जी ने देखा जो और कौन रक्षा कर, तो प्रभु को स्मरण किया, तो प्रभु ने आकर के इनकी रक्षा की। अरे तू तो किसके लिए भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, तो शिव को खोज रहा हूं। किस लिए? जरा उन्होंने मंत्र दिया है, परीक्षा करूंगा। अरे बेबू तुम अपने ऊपर में परीक्षा क्यों नहीं कर लेता? शिव जी की कोई बात सत्य होती है? वो तो झूठा है। कहे सचमुच के तो जय ही शिव बना दिया जाए। मोहनी रूप को शंकर जी ने देखना चाहे, कहे मत देखो। बार बार जब शिव जीत करने लगे तो मैंने कहा अच्छा देख लो, किंतु सावधान रहना। जब ही मूर्ति प्रकाशित की, मोहनी छोड़ बरसी अत्यंत सुंदरी रूप से महिला, शंकर जी दौड़े उनके पीछे पीछे और ये भगी। बीच में चारों तरफ मैंने चादियां नंगे हो गए। पार्वती जी ने पकड़ा, अरे क्या कर रहा है, तो भी बोध नहीं। तो भगवान ने कृपा करके अपने मूर्ति हटा दी। तो शिव जी अरे ये क्या हो गया। इसलिए शिव जी परम भक्त हैं भगवान के, प्रभु उनको खूब प्रीति करते हैं। भगवान मत समझो, गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मा और शिव ही यदि भगवान नहीं हुए तो और लोगों की तो बात क्या, उनका कुछ गुण ही नहीं, इसलिए इनको गुणावतार कहते हैं। इसलिए ये कृष्ण परब्रह्म है, देखते हैं नन्हे से छोटे से, ये स्वयं भगवान है। इनके प्रति भक्ति हो, भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कहते हैं किसको? अधिकांश लोग 99% लोग जगत के नहीं जानते हैं जो भक्ति किसको कहते हैं। हमने देखा है मथुरा में और सब जगहों में लोग शंकर जी के चौकट पर पहुंचते हैं मंदिर के, और चौकट को ऐसे ऐसे पकड़कर और दो पैसे का बताशा लेकर के और वह माला जो कि दुकान पर बैठने वाला हजारों माला चढ़ रही है, और वो फिर भीतर रास्ते से वो फिर दुकान पर आ रही है, और वही माला बार बार टर्न बाई टर्न चली आ रही है, और उसी माला को फिर लेकर के शंकर जी के पास में कहते हैं प्रभु हमारा सब रोग दूर हो जाए, हमारा विवाह नहीं हो रहा, प्रभु जी आप कृपा कर, हमारी लड़की को विवाह नहीं, हमारी लड़की को कोई संतान नहीं। इस तरह के मनोवृत्ति मनाते हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति किसको कहते हैं? सा परां भक्ति ईश्वरे, वो जो कृष्ण है उनके लिए वह क्रियात्ता काई बाची पर मानसिक तन से मन से वचन से, वो सारी चेष्टाएं जो कृष्ण को केवल मात्र प्रसन्न करने के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं होती। अपने लिए करेंगे तो वो कर्म हो जाएगा, इसलिए मत करो ऐसा। अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी किसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए ये भक्ति मत करो। रावण शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा भारी यज्ञ कुंड बनाया, और उसने अपने सिर को काट करके और आग में शंकर जी बिल उठ करके बैठे, बोले पर मांगो। अच्छा ये जो भक्ति किया कैसी भक्ति है? भक्ति है कि नहीं कि विचार करेंगे। उसने अपने सिर का जो हवन किया आग में, ये किसके लिए? शंकर जी को प्रसन्नता करने के, प्रसन्न हो हाँ प्रसन्नता के लिए तो किया, किंतु प्रसन्नता होने से उनको फिर अपना कुछ बना लेने की, विश्व में हमको कोई मार नहीं सके, मैं ऐसा बलवान हो जाऊं लंका सोने की हो जाए, इसलिए ये भक्ति नहीं। इसको भक्ति नहीं, धन के लिए जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उनको दे देते हैं, ये भक्ति नहीं हुई, भक्ति की कोटि में नहीं हुई। जो मुक्ति चाहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके जैसा स्वार्थी और कोई नहीं है, वो सबसे नीच है, उनके जैसा कर्मी भी नीच नहीं। मुक्ति क्यों चाहता है? अपने सुख के लिए, जो संसार का दुख न रहे। हम तो ये चाहते हैं जन्म कहीं भी हो, कीड़े का भी मकोड़े का हो, किंतु संतों के मुंह से हम भगवान की कथा सुनते रहे। ये अच्छा है ना मुक्ति अच्छी है, मुक्ति अच्छी नहीं है। नाथ जोनि शास्त्रेषु येषु येषु प्रजाम्यहं तेषु अचला भक्ति अत्युत्तम सदा वही। हे प्रभो, अपने कर्मों के फल से हम जीव योनि में जाएं, नरक में भी जाएं, वहां पर भी आपकी भक्ति होगी, मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपके भक्तों मुख से मैं आपकी कथाओं को सुन। ये भक्ति है, यही से भक्ति आरंभ हुई। इसलिए भक्ति में इसलिए शब्द दे दिया अहेतु की, कोई हेतु न हो, कोई कारण न हो। भगवान की भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अहेतु। जैसे आग जलाती है, किस लिए जलाती है? उसका स्वभाव। पानी जहां भी रहे आग को बुझा देता है। क्यों बुझाता है? उसका स्वभाव, कोई हेतु नहीं। आप यमुना का पानी लीजिए, पीजिए और फिर यमुना में जाइए, डूब जाइए तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। यमुना का इसमें किसी में स्वार्थ नहीं है। इसलिए जीव का धर्म ही है भगवान की सेवा करना। भगवान की जो भक्ति हम करते हैं उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए। नहीं तो कारण दूर हो जाएगा, भक्ति भी दूर हो जाएगी। बेटा के लिए भजन कर रहे थे, बेटा हो गया, भजन छोड़ दिया। हम भजन कर रहे थे खूब, हमने कहा जी हमारा बेटा न मरे, करते करते प्रभु जी से रोज रोज मनौती कर रहे मनौती, किंतु लड़का मर गया। अरे हमारा लड़का मर गया, ये छोड़ो, ये पत्थर छोड़ो। कारण से जो कुछ होता है वो कार्य समाप्त होने के बाद में वो संत चीज हो जाता है। इसलिए भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? पहले मैं छोरी के रूप में, विचार के रूप में बतला करके उसके उदाहरण के साथ में मैं बतलाऊंगा। भक्ति के लिए बतलाया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म च कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। थोड़ा सा कठिन विषय है, तभी सुनिए, तब भागवत का सुनना होगा। ये मैं दरवाजे में प्रवेश करा रहा हूँ भागवत के। यदि नहीं समझेंगे भागवत में नहीं प्रवेश कर सकते। जो लोग भागवत में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये जानना भी जरूरी है। पूरा नहीं तो थोड़ा सा समझ में आ ही जाएगा, एक दिन में नहीं आएगा, किंतु थोड़ा सा अवलंबन मिल जाएगा जरूर। इसलिए भक्ति का जब डेफिनेशन बतला रहे हैं, परिचय बतला रहे हैं, तो बतला रहे हैं अन्य अभिलाषिता लौकिक पारलौकिक शारीरिक मानसिक कोई प्रकार की इच्छा मत करो। अन्य अभिलाषिता एक होता है अन्य अभिलाष, कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए छोड़ करके कोई भी तमन्ना हृदय में न हो। एक होता है स्वाभाविक स्थिति और एक होता है अस्वाभाविक स्थिति। यदि खूब विपत्ति में पड़ गए, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी बीच सभा में थी, 60,000 बलों का महागर्वशाली घमंडी दुशासन उनके चीर को खेच रहा, बड़ी मोटी मोटी भुजाएं हैं, बड़ा घमंडी, और दुर्योधन वहीं पर बैठा हुआ ताल ठोक रहा है, जंघे को कपड़े हटा दिया और कहा जी इसी पर बैठा हो, अंधा का पुत्र है, अंधा होता मैं जरा दिखला दूं इसे। और कर्ण दांत बाहर करके हंसने लगा और उनका साथी शकुनी, शकुनी माने होता है गिद्ध, गिद्ध जैसा जो व्यक्ति, वो कहा जी ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है जल्दी से इसको नंगी करके बैठाओ। बड़ी प्रतिप्रता बनती है, देखें इनका तो भगवान कहाँ है, इनके पांडव कहाँ हैं, वो खेच रहा है। इनके पक्ष वाले लोग बड़े प्रसन्न होकर के ताली बजा रहे हैं, अब गई अब गई। उस समय में द्रौपदी जी ने क्या किया? हे गोविंद राकुशर, अब तो जीवन है। पहले कपड़े को अपने दांतों, पहले तो पतियों के तरफ में देखा, पति लोग भीम गदा लेकर के उठे, अभी चून भी चून कर दूंगा। युधिष्ठिर ने उनका कपड़ा खींच दिया, अरे जरा बैठो देखो तो, खुदा मत बनो, खुदा को आने दो। वो बैठ गए, अर्जुन धनुष बाण लेकर एक बाण से सब सब दुष्टों का संहार कर उनको भी खींच करके बैठे। अरे देखो तो इसके बाद में भीष्म पितामह की देखा, जब पितामह हम आपके वंश की हैं, बहू है ना, आप मेरी लज्जा नहीं रख सकते, आपसे भी तो और कोई नहीं है, आप बड़े बड़े धार्मिक हैं। उन्होंने सिर नीचा कर दिया, अरे गुरु जी द्रोणाचार्य आप तो मेरी रक्षा करें, मेरे ससुर जैसे ही धृतराष्ट्र महाराज आप राजा हैं, इसको आदेश नहीं दे सकते, किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, जब नहीं किया और खींचने लगा उस समय में उन्होंने देखा जब प्रभु के अतिरिक्त कोई रक्षा नहीं कर, उन्होंने आंख बंद कर दिया और प्रभु को पुकारने, लेकिन भी अंचल अभी उनके मुख में है, प्रभु छटपटा रहे हैं आने के लिए, किंतु देख रहे हैं कि अभी पूर्ण रूप से इसने हमारे प्रति शरणागत नहीं हुई, अभी दांतों पर भरोसा है, भीष्म पितामह पति इत्यादि के प्रति तो भरोसा नहीं, किंतु अभी भी अपने दांतों के बल पर भरोसा है, दांत से कपड़े पकड़ रहे, जब वो भी नहीं हुआ नहीं। जब उसे भी खींचने लगा तो वो छोड़ दिया और छोड़ करके आग बंद करके दोनों हाथ उठा दिया प्रभु के लिए, बस वो दूर थोड़े हैं कहीं, छठ कपड़े के रूप में वो आकर के लाखों गज बढ़ने लगा कपड़ा, बढ़ते 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 वो सभा एकदम कपड़े से ढक गई, लाल नील पीले पीली सफेद सब साड़ियां, कृष्ण ही साड़ी बन गए कि कृष्ण ने साड़ी दे दी, कोई निर्णय नहीं कर सका, दुर्योधन कुछ नहीं कर सका। इतने में विदुर जी ने कहा अब ये विश्व का संहार होने वाला है, अरे दुष्ट अभिमानो देख नहीं रहा है, तब अंशे ने आदेश दिया अरे बंद करो। तो इस तरह से अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, उसने अपने विपत्ति में प्रभु को बुलाया, ये अस्वाभाविक स्थिति थी, इसमें कोई लालसा भी हो जाए तो वो क्षम्य है, घर में डकैत घुस आए और उस समय कहे प्रभु रक्षा करें ये कोई बात नहीं, किंतु स्वाभाविक स्थिति में नहीं होना चाहिए जो प्रभु हमको धन दो पुत्र दो हमारी हमारी रक्षा करो, तब वो भक्ति सहज की हो जाएगी। इसलिए अपने जबकि बुद्धि ठीक है स्वाभाविक स्थिति है तो उनसे कुछ मत मांगो, वो देने वाला समझने वाला जो हमको क्या जरूरत है वही जानता है, इसलिए कोई हेतु नहीं होना चाहिए, पहले ये समझो। अब भक्ति किसको कहते हैं इसी के लिए बतला रहे हैं, ज्ञान कर्म आदि अनापकम, पहला उसका ये है एक हेतु, उसमें पहली शर्त यह है कोई भी लाल जागतिक और पारलौकिक कोई भी कामना उस भक्ति के लिए मत करो। हम किसी को 5,000 रुपया हम देते हैं, अच्छा फूट का सैकड़े दर से कितने मिले बतलाओ तो, जहां पर 13 रुपये 13.5 रुपये सूद मिल रही है हम उतने रुपए को लगाते हैं, कम है नहीं लगाते, ये अहेतु की नहीं हुआ ये कारण हुआ, भगवान में कारण और सूद मत देखो, कोई भी लालसा न हो बस वो प्रसन्न हो। दूसरी बात कर्म ज्ञान जो तपस्या के अधीन भक्ति न रहे, भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति परम स्वतंत्र वृत्ति है, एक दुष्ट व्यक्ति में भी दुराचारी व्यक्ति में भी यदि भक्ति हो जाए तो संसार में सबसे श्रेष्ठ बना देगी, अजामी यरत्नाकर दस्यु वाल्मीकि जी, कितने कितने दुष्ट लोग हो जगाई बधाई अभी दुष्ट लोग है, किंतु भक्ति ने जब ही प्रवेश किया है उसको संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया, भगवान का सबसे अधिक प्यारा हो गया, इसलिए गीता ने भी कहा अभी के सु दुराचारो भजते माम अनन्यवाद साधु देव सम्मंतव्य सम्मंतव्यस्तु, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी हो किंतु भगवान की अनन्य भजन करता है तो वो उसको साधु समझो, उसकी निंदा करेगा तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, मत निंदा करो नर्क में जाना पड़ेगा। अब वो जल्दी से ही धर्मात्मा क्षिप्रम भाव से धर्मात्मा बहुत जल्दी भक्ति के प्रभाव से उन्नत हो जाएगा। इसलिए कर्म के द्वारा भक्ति को मत ढको, यज्ञ एक कर्म है, घी डाल करके अग्नि में स्वाहा करते हैं। आजकल वैसे पुरोहित भी कम हैं, यदि हो भी तो ये सब कर्म है। इसके द्वारा भक्ति को मत ठको, कैसे ठकेगी? उसमें भगवान का नाम होता है, वहां पर भागवत की कथा होती है, भक्ति की कोई बात होती है, इसलिए भक्ति उस कर्म के द्वारा यज्ञ इत्यादि के द्वारा ढक गई, उसका अधिक से अधिक फल हुआ। यदि करोड़ों यज्ञ किया तो स्वर्ग में स्थिति होगी, और उस स्वर्ग में जाकर के क्या होगा? ते तं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्स्यलोकं विशन्ति। यदि स्वर्ग में भी गए यज्ञों के द्वारा तो वहां से फिर उल्टे लौट जाना पड़ेगा, जबकि तुम्हारा कर्म का फल क्षीण हो जाएगा, फिर लौट आना पड़ेगा। बहुत से लोग लौट आए हैं वहां से, और अधिकांश लोग, मैंने सभी लोग प्राय लौट आते हैं, अपने कर्मों का फिर इस संसार में फल भोगेंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, उसे अच्छा नहीं। वहां पर क्या है? वहां पर केवल भोग ही भोग है, वहां पर तो भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसलिए स्वर्ग से कोटि गुना श्रेष्ठ ये पृथ्वी है, जहां पर कि भगवान का भजन हो सकता है, जहां पर कि संत लोग होते हैं। एक बार देवताओं ने कहा था सुखदेव गोस्वामी से, ये भागवत की कथा हमें दे दें और स्वर्ग इत्यादि जो कुछ है सब कुछ आप लोग ले। का जैसे मूर्ख बनाता है, मूर्ख समझता नहीं है। ये परीक्षित जी और इनकी सभा भागवत का रसक पालन करेगी और वो लोग बैकुंठ में जाएंगे, ये साधारण चीज नहीं किया। इन्हें देवता लोग भी ललचते हैं कि मनुष्य जन्म हो और हम लोग भगवान का भजन करके भव सागर को पार कर जाए। इसलिए मनुष्य जन्म को साधारण आप ऐसे मत समझेंगे, और ऐसे तैसे आप लोग उसको वृथा गवा मत देंगे बिना भजन के। इसलिए कहते हैं कर्म के द्वारा भक्ति को मत ढको, ज्ञान के द्वारा भक्ति को मत ढको। ज्ञान किनसे माने? क्या मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सोहम करते हैं, मैं भी वही हूं। दुर्गा जी पार्टी में खड़ी रहती हैं और सुनते ही खड़ग निकाल करके उसका सिर कत्ल करके मुंडमाला में पहन लेती हैं, शंकर जी को पहना देती हैं। क्यों? अरे कल तक तेरी मैया थी, अम्बा 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 कहता था और हमारी आराधना करता था, अब तू शिवोहम कहता है, शिव का दास हूं ये कहता है, तो शिव का दास नहीं कह करके कहता है शिवो, मैं शिव हो गया। पार्वती का जी आखिर कल तक तो तू मेरा सेवक था, आज तो हमारा पति बन गया, शिव बन गया, बस खड़ लेकर के गला उतार देती है। ऐसे ऐसे लोगों का ही मुंडमाल अपने गले में बनती हैं और शंकर के भी गले में देती है। इसलिए शिव मत करो, सोहम मत करो। अरे जो मृत्यु और जन्म में पड़ा हुआ बिल बिला रहा है, स्त्रियों के लिए पति उनको घर से बाहर कर देता है, कहता है व्यभिचार करो, व्यभिचार नहीं करेगी तो मैं नहीं रहूंगा, मैं बिजनेस करूंगा इससे। बतलाओ कितनी ऐसी सप्ते परों में निकलती रहती है। उस समय में स्त्री बिदेदारी वो स्वयं है, ब्रह्म है, जो अपने पति से भी प्रतिकार नहीं कर सकती और वो ब्रह्म बन गई। पुरुष लोग भी खूब अच्छे थे, एक कंपनी के डायरेक्टर थे, उनको 1,00,000 रुपया महीना मिल रहा है, न जाने क्या कैसी हवा चली और उनको पक्षाघात हो गया, पैरालाइसिस हो गई, निकल गया ब्रह्म ना, स्वाम है, ब्रह्म है, जगत को जन्म देने वाले हैं। इसलिए ऐसे मंत्रों का उच्चारण आप लोग मत करें, सोहम शिव हम मत करो, मैं शिव का दास हूं ऐसा कहो, मैं भगवान का दास रोशनी करो, नहीं तो ऐसे करने से भक्ति थक जाती है और नष्ट हो जाती है, ऐसा मत करो। जो तपस्या व्रत होम स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा भगवान मिलेंगे, एक मार्ग मिलेंगे, कैसे? ये ऐसी भक्ति को कहते हैं, इसी के द्वारा मिल सकते हैं। ये भक्ति तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की माने तीन प्रकार की नहीं, एक ही प्रकार की, किंतु तीन स्टेज उसके हैं। कौन कौन सा? एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और एक प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति होना चाहिए, पहले मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण का हूं, मैं दूसरा कुछ नहीं, हमारा इसमें जो आप मेरी जो आत्मा है वो कृष्ण का दास है। ऐसा समझ करके सदगुरु से पूछे, जो कि भगवान के तत्व को जानते हैं, भगवान का नाम करते हैं, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसे कौन? नारद जी, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, उनकी धारा में रहने वाले जो लोग हैं, तत्वदर्शी हैं, ये सब लोगों से पूछो कैसे भगवान मिलेंगे। कहे देखो, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति होने पर साधनों का संभव होता है, इसलिए सुकृति करो। सुकृति क्या है? कोई भी चीज भगवान या भगवान के जो लोग हैं उनके लिए कुछ सेवा की भावना हो और कुछ करो। जैसे हमने गाय दुहा, गाय ने बच्चा दिया, उसका पहला जो दूध 21 दिन के बाद में होता है ठाकुर जी को लेकर के मंदिर में, ठाकुर जी के घर में बत्ती के लिए घी रुई ये सब दे दिया, बत्ती लग गई, इसे जो सुकृति होगी, अच्छे कर्म हो गए, इसे भगवान के चरणों में अगले साधुओं का संग होगा, वो तुमको भगवान में लेकर के लगा देगा। एक चूहा तेल पी रहा था प्रदीप में और वो बत्ती अब बुझने जा रही थी, तो जब गया पीने के लिए तेल, इतने में उसके दांत नुकीले होते हैं, वो झट बत्ती में लग गई और जरा दिया बत्ती उसकी प्रदीप पर आगे बढ़ गई, धक से जल उठा प्रदीप, वो डर के मारे भाग। अब उसको बत्ती जो बुझ रही थी उसको बढ़ाने का लिए उसकी स्वीकृति हो गई अनजान में ही, अब दूसरे जन्म में वो महात्मा होकर के साधुओं का संग करके गुरु करके और भगवान को प्राप्त कर, इसको कहते हैं सुकृति। इसी तरह से बहुत से उदाहरण है, एक कबूतर बैठ रहा था पेड़ की डाल पर, वहीं पर मंदिर था, एक बहेलिया ने बाण मारा, वो गिर गया और वो बेहोश स्थिति में छटपटाता हुआ मंदिर के चारों तरफ में परिक्रमा कर लिया, हो क्या गया, उसकी सुकृति होगी दूसरे जन्म में, उसकी श्रद्धा होकर के साधुओं के संग में गुरु पदार्थ करके भगवान को पा लिया। ये प्रक्रिया में आना पड़ेगा। जिन लोगों को देखते हैं कि जन्म में तो ऐसी सुकृति नहीं की किंतु सदगुरु लाभ हो गया, समझे पूर्व जन्म में वो प्रक्रिया पार कर चुका है, तब वो साधन भजन में आया। बिन गुरु भवन थी तरह न कोई, बिना गुरु के कोई भी भव सागर को नहीं पार कर सकता। गुरु का लक्षण क्या है? भगवान का नाम करते हैं, कृष्ण को भगवान जानते हैं, भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, तन मन से भगवान का भजन करते हैं, तब तो ठीक है। ऐसे गुरु नहीं मिलने से, जैसे हम देखते हैं कि महाभारत के समय में पीछे से बहुत से गुरु हैं, एक बहुत प्रसिद्ध गुरु थे चारवाक, उनका नाम था। चारवाक माने क्या? सुंदर सुंदर बोली से लोगों को मोहित करने वाले और उनके फॉलोअर हो जाते, उनका भाषण सुनने के लिए करोड़ों लोग से कम नहीं इकट्ठे होते थे, जहां जाते थे करोड़ों लोग उपस्थित हो जाते। कहते थे ये देखो, देवता देवी कुछ नहीं, गीता भागवत रामायण वेद कुछ नहीं, साधु संत कुछ नहीं, खाओ पियो मत पर, ऋण कृपा हितम दिवी, ऋण करके भी घी खाओ, घी से शरीर बनता है, और कसरत करो और बस यही भगवान का सबसे मिलना है। सात प्रातम पिता माता का मत करो, क्यों? अरे उनको थोड़े मिलता है, यहाँ तुम चावल दाल लड्डू पेड़ा रसगुल्ला देगा उनको कैसे मिल जाएगा? छत पर मैं बैठा हूँ, हमको यहाँ मंत्र के बल से हमको कोई खिला दे तो ये बात तो ठीक रहता है। धर्म कर्म कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। एक साधु उसको संत मिला, भाई तुम 70 हो और तुमको यहाँ से भी चीज नहीं मिलती है, तब बैकूफ कहीं मिलती है? मैं बैकूफ तो हूँ, ठीक है, अच्छा तुम छत पर बैठो, मैं तुमको यहीं से तुमको दिला देता हूँ। तो वो छत पर चल गए, पर दिखलाओ तो, तेरी साले की, तेरी माँ की, थर तेरी की, दो चार गालियां दिया, ऊपर से उठ करके मारने के लिए खड़ा हो गया। कहा मैंने तुमको, मैं नीचे से तो मैं करा था, तुमको थोड़े ऊपर में गई। अरे मंत्र ऐसे ही है, लाख योजन दूर, लाख दीप दूर, दूसरे लोगों में मंत्र दे सकता है। एक छोटी सी गाली यदि तुम्हारे छत पर पहुंच गई हमारी, तो तुमको लगी क्यों? क्यों लगी? चरवाक में उत्तर हो गया, उन लोगों का अब पड़ गया पाला गोपियों से, क्या है ना, अब गोपियों से पड़ गया पाला। जरा जरा एक किस्म बीच में सुना दो तो, कहते कृष्ण भगवान को गोपियों से पाला पड़ गया। अभी तक कृष्ण को किसी से पाला नहीं पड़ा था, अब गोपियों से पल्ला पड़ गया। जरा सुन लो, जल्दी करो। इसलिए पहले बतला रहा था साधन भक्ति, बिन गुरु पब भवन की तरह, बिना गुरु का नहीं होगा। किंतु कर्मी गुरु से, हारमोनियम बजाने वाले गुरु से, एकलव्य के गुरु से नहीं होगा, उसे भक्ति नहीं होगी। वो तो नारद जी हों, प्रहलाद जी हों, हनुमान जी हों, शंकर जी हों, पार्वती जी हों, ऐसे लोगों की कृपा से होगी। ऐसे गुरु उनकी धारा में बहने वाले हों, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्तियों के सिर पर हाथ रख दिया और प्रेम से नाचते हुए हरे कृष्ण 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 कर, हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधे हा राधे। जिधर उन्होंने दृष्टि देखी, मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षी की पतंग, एक हाथियों का दल जा रहा है, उनके तरफ में कृपा दृष्टि की। हाथी सुन उठा करके कृष्ण कृष्ण कहते हुए घुटनों को टेक दिया। ये है ना गुरु,